अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस उपनिषद के छह प्रकरणों में से चतुर्थ प्रकरण का विचार हो रहा है। पराविद्या का मुंडक उपनिषद में कथन हुआ, अथ परा ययातद अक्षरम अधिगम्यते वाक्य से, उसी का विस्तृत वर्णन करने के लिए प्रश्न उपनिषद के अवशिष्ट तीन प्रकरण हैं। तुम पदार्थ शोधन के लिए उपयोगी आचार्य पिपलाद जी से ऋषि गार्गे ने प्रश्न किए अलग अलग पांच। चार प्रश्नों का उत्तर गार्गे के आचार्य पिपलाद जी ने दे दिया है। उनसे यह निश्चित हुआ कि जागृत अवस्था जीव की उपाधिभूत बाह्य इंद्रियों का धर्म है, जीव का स्वरूपभूत धर्म नहीं है। तीनों अवस्थाओं में शरीर की रक्षा करना प्राण का धर्म है, आत्मा का नहीं। स्वप्न अवस्था अंतकरण जो मन है उसका धर्म है, उस स्वप्न अवस्था रूप धर्म का भी धर्मी आत्मा स्वतः नहीं है। और सुसुप्ति अवस्था आनंदमय कोष का धर्म है, अविद्या काराकारित मन की जो सामान्य अवस्था है उसका धर्म है, न कि आत्मा का। तो इस प्रकार ये तीनों अवस्थाओं से तथा शरीर संरक्षण रूप व्यापार से स्वतः रहित ही आत्मा है। ये चार प्रश्नों का उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाद जी ने बताया। अब जो शोधित स्वरूप है उसका निरूपण करने के लिए पंचम प्रश्न गार्गे का है कि कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति। सर्वे शब्द से ग्राह्य जो सभी स्थूल सूक्ष्म भूत तथा ग्राह्य ग्राहक विभाग से विभक्त सभी इंद्रिया एवं उनके विषय और प्राण तथा उसके द्वारा धारित होने वाला यह जगत, ये कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति में सर्वे शब्द से ग्राह्य है। और ये किस में आश्रित है, ये इन सब का सत्ता स्फूर्ति प्रदायक कौन है जागृत अवस्था में, और सुसुप्ति अवस्था में इनकी प्रतीति नहीं होती है, तुरीय अवस्था में भी ये नहीं रहते हैं, तो इनका उस समय किसमें विलय हो जाता है, सुसुप्ति के समय तुरीय अवस्था में भी। ये कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति इस प्रश्न से प्रश्नवाक्य से पूछा गया है। आचार्य पिपलाद जी उत्तर दे रहे हैं सातवें कंडिकारूप वाक्य से पंचम प्रश्न का। ये कहा गया कि जैसे दीन में अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए पक्षी अपने घोंसले से उड़ करके चले जाते हैं चारों दिशाओं में और दिन भर कहीं न कहीं खोजते रहते हैं आजीविका अपनी। और जैसे ही सूर्यास्त होना होता है तो फिर जिस पेड़ पर उन्होंने घोंसला बनाया हुआ है उस पेड़ के ओर आना शुरू करते हैं और घोंसले में संप्रतिष्ठित होते हैं, स्थित होते हैं, वह विश्रांति पाते हैं। उनका आश्रय स्थान वह पेड़ है जिस पेड़ पे उनका घोंसला है। ऐसे ही जागृत और सुसुप्ति अवस्था में ये सब भास्वान जितने भी पदार्थ हैं वे सब के सब संप्रतिष्ठित होते हैं इसी तुरीय आत्मा में, जो स्वतः जागृत अवस्था का भी धर्मी नहीं है, तीनों अवस्था में शरीर संरक्षा भी जिसका कार्य नहीं है, जो स्वयं न स्वप्न देखता है न सोता है, ऐसा जो अवस्था त्रयातीत अवस्था त्रय का साक्षी है उसे कहा गया एवं हवई तत्सर्वे परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते में परे आत्मनि शब्द से। सातवीं कंडिका में जो उत्तरार्ध में परे आत्मनि ये शब्द है ना, आत्मनि का विशेषण है परे, और सर्वे शब्द से तत्सर्वम, ये सर्वे का सर्वम है तो सर्वम से ग्राह्य है वह सारा जागृत में और स्वप्न में भासमान जो जगत है, और इन तीनों अवस्थाओं का जो साक्षी है वो है पर शब्द से ग्राह्य, और इन तीनों अवस्थाओं में भासमान पदार्थ है तत्सर्वम शब्द से ग्राह्य। ये सब का सब तीनों अवस्था में भासमान जगत वो क्या होता है तो परे आत्मनि संप्रतिष्ठन्ते, तो अपने वास्तविक स्वरूप में विलीन हो जाता है, वो उसका अधिष्ठान है। जब वहां हमारी दृष्टि पहुंचती है अधिष्ठान में तो फिर अध्यस्त अधिष्ठान में बाधित रूप से विलीन हो जाता है, उसका विलीन होना है बाध हो जाना, अधिष्ठान से अलग उसकी प्रतीति नहीं होती। जिस समय स्पष्ट प्रकाश होता है रज्जु का ग्रहण होता है तो रज्जु में अध्यस्त सब के सब विलीन हो जाते हैं, कहां पर रज्जु में, रज्जु से अतिरिक्त है ही नहीं, रज्जु ही अपने अज्ञानवशात सर्पादि रूप से भास रही थी। ऐसे अविद्या अवस्था में यह पर आत्मा शब्दित चेतन तत्व ही अपने अनादि अनिर्वचनीय अज्ञान से जगत के रूप में भासता है। जगत चैतन्य का विवर्त स्वरूप है, जैसे रज्जू का विवर्त स्वरूप है सर्पादि, ऐसे ब्रह्म का विवर्त स्वरूप है जगत। विवर्त स्वरूप है का मतलब वो अज्ञान से प्रतीयमान स्वरूप, उसे कहा जाता है विवर्त स्वरूप। रस्सी का विवर्त सर्प है का मतलब रस्सी के अज्ञान से प्रतीत होने वाला वो रस्सी का स्वरूप है। ऐसे ब्रह्म का विवर्त ये तत्सर्वम शब्दित जगत है, वह जब आत्मनात्म विवेक करते हैं तो उपाधि मात्र रूप जो जगत है वह आत्मा जिस आत्मा का विवर्त है उस आत्मबोध से वह बाधित हो जाता है। जब रस्सी का ज्ञान होता है तो सर्पादि नहीं प्रतीत होते, जैसे ऐसे आत्मा का जब वास्तविक स्वरूप प्रतीत होगा तो यह नहीं रहेगा। या तो विवर्त को देख सकते हैं या तो अधिष्ठान को देख सकते हैं, दोनों को नहीं देख सकते। रस्सी भी दिखे और सर्प भी दिखे, ये दोनों साथ साथ हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ऐसे परे आत्मनि संप्रतिष्ठते तत्सर्वम् का अर्थ है उस तुरीय स्वरूप में सब का सब विलीन हो जाता है, उससे अनतिरिक्त है। उसका अज्ञान तुरीय स्वरूप का ज्ञान होते ही चला जाता है। तुरीय स्वरूप का ज्ञान तो अज्ञान का ही ये सब परिणाम था। सुषुप्ति के समय तो सूक्ष्म रूप से अज्ञान में रहता है ये सब का सब, और तुरीय अवस्था में तो बाधित हो जाता है, विलीन हो जाता है। ये कहा गया कि कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्ति, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए एवं हवै तत्सर्वम् परे आत्मनि संप्रतिष्ठते। तो एवं एव ये शब्द बताता है दृष्टांत के अनुसार। तो दृष्टांत में जैसे चारों दिशाओं में उड़ने वाले पक्षी कहां पर रात्रि में रहते हैं, वो वास वृक्ष में। वास वृक्ष का अर्थ है उन्होंने जिस पेड़ पर अपना घोंसला बनाया हुआ है वो पेड़ है उनका आश्रय, रात्रि में वहां मिलेंगे। ऐसे उस पेड़ के स्थान पर है परमात्मा, और पक्षियों के स्थान पर है तत्सर्वम शब्दित, ये सारा जगत। तो दिन में जो बाहर दिख रहा है ये सारा जगत, तुरीय अवस्था में वो कहां रहता है, वो परमात्मा में। अभी भी परमात्मा में ही है लेकिन माया से बाहर दिखता है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में कहा गया ना, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम। तो वो है कहां, तो निजांतर्गतम, वो है अपने अंदर। तो निज है स्वयं, तो निजांतर्गत है यानी आपके वास्तविक स्वरूप में स्थित है। कौन? तो विश्वम। विश्वम शब्द का अर्थ होता है सर्वम, उसे यहां पर तत्सर्वम शब्द से कह रहे हैं। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में विश्वम शब्द से कहा गया। ये विश्व कहां है, कहते विश्वम निजांतर्गतम। कैसे आपके अंदर है, तो कहते हैं जैसे कोई दर्पण के अंदर चित्र होता है, प्रतिबिंब होता है, वो अंदर दिखता है ना, ऐसे ही आपके अंदर ही ये सारा विश्व है, संसार है, निजांतर्गत है। वो ये नहीं कि तुरीय अवस्था के समय सुसुप्ति के समय ही हमारे अंदर है और बाद में बाहर। इस समय भी हमारे अंदर ही है तो फिर अंदर ही क्यों प्रतीत नहीं होता? जैसे मन की हम अनुभूति करते हैं हमारे अंदर है, हृदय हमारे अंदर है, ऐसे विश्व भी सारा संसार भी हमारे अंदर है, ये प्रतीति क्यों नहीं होती इस समय? तो कहते मायया बहिरिवोद भूतम, तो माया से बाहर उत्पन्न हुआ सा प्रतीत हो रहा है। जैसे स्वप्न अंदर होता है कि बाहर होता है? अंदर ही होता है शरीर के, लेकिन जिस समय स्वप्न देखते हैं उस समय ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे शरीर के अंदर हम सारा स्वप्न प्रपंच देख रहे हैं, ऐसा मालूम होता है? या कभी हरिद्वार के कुंभ में गए होंगे और वो संस्कार प्रकट हुआ और हरिद्वार का कुंभ का स्वप्न दिख रहा है, तो वो सब शरीर के अंदर है ऐसा स्वप्न देखते समय प्रतीत होता है कि बाहर प्रतीत होता है? वो सब हरिद्वार का दृश्य पूरा दिखेगा। वो क्यों दिखता है बाहर? है शरीर के अंदर, वासना में है मन, उस समय हृदय में है, और वो वासनाएं मन की हृदयस्थ मन में ही है, इसलिए सब का सब प्रपंच वो मन अंदर ही है आपके, लेकिन बाहर दिख रहा है। क्यों? तो कहते हैं निद्रा से, निद्रा एक दोष है, तो निद्रा के कारण आपके अंदर का स्वप्न प्रपंच जैसे बाहर सा प्रतीत होता है, ऐसे आपके अंदर का ही यह विश्व आपको माया से बाहर सा प्रतीत होता है, है आपके अंदर ही इस समय भी, लेकिन वो माया से बाहर सा दिखता है। तो ये नहीं कि दृष्टांत सुसुप्ति का दिया है तो सुसुप्ति में ही मात्र अंदर रहेगा, ऐसे तुरीय अवस्था में ही आपके अंदर रहेगा और बाद में बाहर वस्तुत ही होगा। जागृत अवस्था में जब तक हम अपनी अहंता को इस जगत के अंदर का ही एक अंश रूप, जो ये वेष्टि कार्यक्रम संघात है, शरीर है, इसी शरीर तक सीमित रखते हैं। अंदर और बाहर ये तो देश है ना, और देश की भी कल्पना आपके स्वरूप में है, जैसे बाहरी जगत पृथ्वी आदि आपके स्वरूप में विवर्त है यानी कल्पित है, ऐसे देश भी और काल भी समय भी ब्रह्म आत्मा का विवर्त है। जब विश्व कहते हैं तो उसमें देश काल और वस्तुएं सब आ जाती, खाली वस्तु मात्र नहीं, देश भी और काल भी। इसलिए अंदर और बाहर ये तो आप अपनी अहंता को सीमित रखते हैं, किसमें? इस विश्व के अंदर का एक जो वेष्टि कार्यक्रम संघात, इसी तक सीमित रखते हैं, शरीर तक ही, वर्तमान शरीर तक। तो फिर वर्तमान शरीर बन गया अहम, और इस शरीर के अंदर जो है उसे माना जाता है अंदर, प्राण को, मन को, बुद्धि को और आनंदमय कोष को, ये चार कोषों को मान लेते हैं अभ्यंतर, और बाकी ये शब्द आदि विषय और पृथ्वी आदि सारा जगत, इसको मान लेते हैं बाहर। अंदर बाहर का विभाग करने के लिए सीमा क्या बन गई? आपकी अहंता जहां पर रुकी हुई है शरीर में, वो शरीर ही अंदर बाहर का विभाजन करने के लिए सीमा बन गया। लेकिन वेदांत क्या बताता है? कि वेदांत कह रहा है कि ये सारा प्रपंच जिसमें संप्रतिष्ठित है वह आपका वास्तविक स्वरूप है, परात्मा, और उस वास्तविक स्वरूप में आपकी अहंता को स्थित करना, वेदांत का उद्देश्य है। इसी के लिए तो वेदांत प्रमाण है ना। हमने गलती से अपना स्वरूप मान लिया, ये मानव शरीर, इसी में अहंता को स्थिर कर दिया। आपकी इस अहंता को हटा करके वेदांत चाहता है ये सारा संसार जिसमें संप्रतिष्ठित है उस परमात्मा में आपकी अहंता को स्थित कर दें। तो वेदांत जहां पर अहंता को ले जाना चाहता है वहां पर यदि आपकी अहंता पहुंच जाए, जिसकी अहंता पहुंच गई, तो वो फिर मैं किसको समझेगा? जिसकी अहंता जहां है वह वही है। तो जिस वेदांत ने आपकी अहंता को शरीर से निकाल करके पहुंचा दिया सारे विश्व के आश्रय में, अधिष्ठान में, तो उस अधिष्ठान में अहंता पहुंची तो उस अधिष्ठान में ये सारा संसार संप्रतिष्ठित है कि नहीं? और सारे संसार का आश्रयभूत परमात्मा मैं हूं, ऐसा जो अनुभव कर रहा है वह ये सारा संसार अपने अंदर देखेगा कि बाहर देखेगा? जो शरीर को ही मैं समझ रहा है उसे तो संसार बाहर दिखेगा, शरीर को मैं समझना ही माया है। और इस माया से हमें ये बाहर दिख रहा है, और ये माया हट गई और वस्तुतः ये संसार जहां है वो मैं हूं, जहां संप्रतिष्ठित है। इस संसार का जो अधिष्ठान है, संसार की कल्पना का, वो मैं हूं, ऐसा निश्चय हो जाए तो ये संसार दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में जैसा बताया गया है ना, निजांतर्गतम, उसी में प्रतीत होगा, आपके अंदर प्रतीत होगा। वो देश भी अंदर बाहर कुछ रहेगा ही नहीं, अंदर बाहर की जो सीमा बना हुआ शरीर था वो शरीर भी बाहरी जगत की तरह बाहरी दिखेगा। वो एक कण है छोटा सा पूरे संसार में, संसार का, वो भी बाहर, और बाहर का मतलब बाहर सा प्रतीत होने वाला जो जगत, उसी के अंदर वो, उसके सहित पूरा जगत आपको अपने अंदर दिखेगा। और महसूस करोगे कि ये तो केवल हमारे एक कल्पित अंश में है, और हम तो त्रिपादस्य अमृतं दिवि, पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि, यह मंत्र बताता है पुरुष सूक्त का, कि ये सारा जो साध्य साधनात्मक संसार है वह परमात्मा के एक चतुर्थांश में है, और बाकी जो परमात्मा का अंश है वो त्रिपाद, उसे तो छुआ भी नहीं इस संसार ने कभी। का मतलब परमात्मा इस संसार से बहुत बड़ा, व्यापक है, अपरिछिन्न है। उसके अंश बताना उस मंत्र में अभिप्रेत नहीं है, लेकिन उस परमात्मा की व्याप्ति, अपरिछिन्नता दिखाना जरूरी है। संसार में तो प्रतीत होता है कि पृथ्वी की अपेक्षा अधिक व्यापक है पानी, पानी से भी व्यापक है अग्नि, अग्नि से भी व्यापक है तेज, क्या नाम है, वायु, वायु से भी व्यापक है आकाश, आकाश से भी व्यापक है माया, और माया से भी ज्यादा व्यापक है परमात्मा, और परमात्मा से व्यापक कौन है? परमात्मा से व्यापक कोई नहीं है, साकाष्ठा सा परागति कहा जाता है, वह अपरिछिन्नता की चरम सीमा है, उससे व्यापक दूसरा कोई नहीं है।